शांति। हमारी योग मौन तपस्या भट्टी में अभी हमको भरपूर करने के लिए हम सबके बीच में आदरणीय उषा दीदी जी आई हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उषा दीदी को आप सभी देखते और सुनते रहते होंगे। आप 30 साल से भी ज्यादा समय से समर्पित रूप में सेवाएं देते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेस, राजयोग शिविर वगैरह कराते हैं। और सबसे पहले आपने हैदराबाद में नागार्जुन फर्टिलाइजर कंपनी है, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्सेस कई समय तक कराए। साथ साथ आपकी विशेषता है और हॉबी भी है कि कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव इन्वेंशन करने का। तो रामायण और महाभारत का आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत बहुत अच्छी रीति से आप सुनाते हैं और देश विदेश में आप कई जगह पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आप हमारी जो पॉलिटिकल विंग है उसके कोऑर्डिनेटर, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आपने ज्ञान जाम्बिया से लिया हुआ है। तैसी अनुभवी मूरत दीदी जी, हम उनको सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन के बेहद की यह तपोभूमि में विशेष तपस्या करने का अवसर प्राप्त होना ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि आने वाले समय में पांडव भवन या मधुबन किला हो जाएगा, तपस्या का किला बन जाएगा, जिस किले के अंदर कोई भी अशुद्ध आत्माएं प्रवेश तक नहीं कर पाएंगी। और ड्रामा अनुसार जब से ये बठियां शुरू हुई है ये महसूस होता जाता कि बाबा के वो महावाक्य साकार होते जा रहे हैं। बाबा की ये कर्म भूमि, बाबा की तपोभूमि, जहां बाबा मम्मा और कई आदि रत्नों ने रह करके तपस्या की है, तो कितनी इस भूमि के अंदर भी शक्ति और सकाश समाई हुई है। और उस कारण से अनुभव यही होता कि यहां जब तपस्या करते हैं तो नेचुरल बाबा की लिफ्ट मिल जाती है और उस लिफ्ट का ही फायदा लेने के लिए यहां जो पहुंच जाता है इस भट्टी में महान भाग्यशाली है। आज का जो विषय है समर्पण मयता द्वारा संपन्नता, इस विषय पर जब मैं सोच रही थी तो बाबा मम्मा की जीवन मेरे सामने आई कि भले हम लोग ने साकार में तो नहीं देखा परंतु दादियों के द्वारा जो बातें सुनी हैं उसके आधार से वो जीवन हमारे सामने आया। कि बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। बाबा को साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार होते ही समर्पणता, जब कलकत्ते में बाबा को ये मैसेज मिला और तुरंत वहां से रवाना हुआ, उसी समय चिट्ठी में लिख दिया कि हमको बादशाही मिल गई और पार्टनर को नकली पत्थर मिल गए, और इस तरह की रेल के सफर करते हुए बाबा जब पहुंचे और वहां आत्म अनुभूति हुई बाबा को, और उसके बाद बाबा ने अपना तन मन धन सब समर्पण कर दिया। ज्ञान जैसे जैसे शिव बाबा ने उस रथ को अपना बनाया और ज्ञान सुनाना आरंभ किया, कुछ बहने माताएं आने लगी, और जैसे ही वो बहने माताएं आई तो एक ट्रस्ट बना करके बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। यानी ये कितनी बड़ी समर्पणमयता कहेंगे, संपन्नता का पहला कदम समर्पणमयता है कि स्थूल की जो भी चीजें थी उस समय उन्होंने समर्पण कर दी, परंतु जैसे जैसे ज्ञान सुनते गए, बाबा भी सुनते गए और वृत्ति विशाल होती गई, भावनाएं बदलती गई, तो बाबा के अंदर एक बेहद की वैराग्य वृत्ति का जन्म होता है। क्योंकि समर्पणमयता के लिए भी पहला आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, तब तक मेरापन समाप्त नहीं होता है। समर्पण खाली स्थूल लेवल पर करने की बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर भी समर्पण करने के लिए सूक्ष्म में भी दो बातें विशेष बाबा कहते हैं, एक मेरापन और दूसरा मैंपन। ये सूक्ष्म भाव को समर्पण करना, जहां ये फीलिंग आए कि ये मेरा है, उस मेरेपन को निकाल करके वहां पर ये लगाना कि बाबा का है, मैं निमित्त हूं, तो निमित्त भाव को विकसित करना, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूं, इस देह के भी ट्रस्टी बन गया हूं, देह भी एक अमानत है मेरे पास में, ये भाव को जागृत करना। आज हमारे पास तो इतनी अव्यक्त वाणियां है बाबा की कि हमने ज्ञान को इतने गहराई से अच्छी तरह से समझा है, लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने तो अभी आरंभ ही हुआ था, लेकिन आरंभ होने के बावजूद भी ये फीलिंग आ जाना कि मैं ट्रस्टी हूं, ये देह भी एक अमानत है, मेरी नहीं है, ये भी समर्पण इस सेवा के अंदर, और ये समर्पण भाव आ जाना 60 साल की आयुष्य होने के बावजूद भी ये नहीं समझना कि भई अभी तो आयु इतनी हो गई है, अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा संकल्प तक नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उस वक्त ब्रह्मा बाबा के लिए भी कि जब आज हम सोचते हैं कल्पना करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि आज हमारे सामने इतने एग्जाम्पल होने के बाद भी हमको सोचना पड़ता है कि क्या होगा। जब बाबा ने स्थूल की चीजों को समर्पण कर दिया, अपने धन को समर्पण कर दिया, संबंधों को समर्पण कर दिया, परिवार को मेरा परिवार है नहीं समझा, है ना? उसके बाद ये मेरे बच्चे हैं, ये भी फीलिंग नहीं, ये भाव भी नहीं। जैसे हर बच्चे, दादी निर्मल शांता दादी कभी कभी अपना अनुभव में ये बात अवश्य सुनाती थी कि जब बाबा के सामने वो खड़ी हुई तो बाबा ने उनसे यही सवाल पूछा कि बच्ची किसके सामने खड़ी है, पहचानती हो? तो दादी को बड़ा बुरा लगा कि मुझे ऐसा बाबा क्यों पूछते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन पूछ रहा है, शिव बाबा पूछ रहा है ये पता ही नहीं। तो इसीलिए जब ये पता नहीं कि कौन पूछ रहा था, उनको बड़ी फीलिंग आई कि आज बाबा ऐसे कैसी बात करता है मेरे से, रूठ करके चली गई। दूसरे दिन बाबा ने फोन किया, मैंने फोन पर जब बात हुई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आई नहीं तुम, रोज तो आ जाती हो, आज आई नहीं। तो कहा आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तो कहा अच्छा, ये तो मैंने कहा ही नहीं। उसने कहा और वो तो चला गया और मैंने तो ये बात कही नहीं। तब निर्मल शांता दादी ने कहा कि फिर आप वो बाबा को मना कर दो कि मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करे, है ना? कहने का भावार्थ मेरा ये है कि संबंधों को भी, मेरा संबंध, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा ये नहीं समझा। अगर इस बात को मैं आज की बात के साथ रिलेट करूं, है ना, या लौकिक में जब गीता पढ़ते हैं तो उस समय अर्जुन के साथ में रिलेट करें, समर्पण मैत्ता का ये तीन दृश्य हम अपने सामने ले आते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ सबसे पहले और कहा कि पहला साक्षात्कार होता है नारायण का, विष्णु चतुर्भुज का, और कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तू मेरा ही स्वरूप है। जब बाबा को ये आया नारायण का साक्षात्कार कह करके कि तू मेरा ही स्वरूप है, उस समय बाबा ने ये छोड़ने का, समर्पण करने का कोई संकल्प नहीं आया, है ना? इसी तरह अर्जुन को भी गीता के अंदर जब ये कहा कि तुम ये युद्ध करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, तो अर्जुन ने युद्ध शुरू कर दिया, नहीं किया। उसने कहा मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं इतने लोगों को क्यों मारूं, मारने के बाद अगर मैं स्वर्ग प्राप्त भी कर लिया तो क्या मुझे उसका सुख मिलेगा, इसलिए मुझे मारना नहीं है, मुझे निमित्त भी नहीं बनना है, ना मुझे स्वर्ग चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ कि तू मेरा ही स्वरूप है, तू वो ही बनने वाला है, उस समय बाबा ने कुछ नहीं छोड़ा। तो अर्जुन को जब ये अनुभव हुआ तो उसने भी युद्ध नहीं किया। तो ब्राह्मणों को देखा जाता है कि ब्राह्मणों को भी जब ये कहा जाता है, पहले दिन ज्ञान में आते हैं तो कि भई आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं, छोड़ने की हिम्मत नहीं आती है, कोई छोड़ने का भाई लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, हंसी आती है। जिस दिन कोर्स किया या प्रदर्शनी में पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का देख करके किसी ने हमें समझाया कि आप ही ये बनने वाले हैं, आपको ही लक्ष्मी नारायण बनना है, ये लक्ष्य है जीवन का, तो क्या आया? ज्ञान में चलने की कोई बात आई, अंदर से संकल्प भी नहीं उत्पन्न होता है। तो न ब्रह्मा बाबा को हुआ, न अर्जुन को हुआ, न ब्राह्मणों को होता है। उसके बाद स्वर्ग का साक्षात्कार से कुछ नहीं हुआ, समर्पणमयता नहीं आई, तो उसके बाद दूसरा साक्षात्कार कौन सा कराया ब्रह्मा बाबा को? विनाश का, महाविनाश। पहले आग के गोले नीचे गिर रहे, उस समय तो बम क्या होता है ये भी मालूम नहीं, 1936 की बात, बम बना ही उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए, तो आग के गोला नीचे आ रहा है और सब भस्मीभूत हो रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, फिर प्रकृति उछल खाती है, सब मर रहे हैं मर रहे हैं। तो दूसरा दृश्य बाबा ने दिखाया, शिव बाबा ने, ये सब मरे पड़े हैं, सब दुनिया खत्म होने वाली है। तो समर्पण हो गया? समर्पण हो गया नहीं, कहा इतना महाविनाश। महाविनाश देख करके वैराग्य जरूर आया, लेकिन मैं सब कुछ समर्पण कर दूं, ये ब्रह्मा बाबा को नहीं आया, ये नहीं आया उस समय क्या कि मैं सब समर्पण कर दूं, यही आया कि भगवान मुझे ये क्यों दिखा रहा है, ये महाविनाश, इतना बड़ा महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है, और ऐसा महाविनाश होगा, है ना? तो ब्रह्मा बाबा को उस वक्त समर्पण करने की भावना जागृत नहीं हुई, तो स्वर्ग देखा तभी भी नहीं हुई, विनाश देखा तभी भी नहीं। इसी तरह शास्त्रों में भी देखो कि अर्जुन को भी दूसरा साक्षात्कार कौन सा दिखाया, कि अर्जुन सब मरे पड़े हैं, काल अकेला ही समर्थ है इन सबको मारने के लिए, तुम्हें तो खाली निमित्त बनना है, तुम्हें खाली निमित्त बनना है। तो अर्जुन ने क्या कहा, मैं क्यों निमित्त बनूं, इतने लोगों को मारने का पाप मैं अपने सिर पे क्यों लूं, मुझे नहीं करना है, मुझे निमित्त नहीं बनना है। तो उसमें भी समर्पण की भावना नहीं आई थी। तो इसी तरह ब्राह्मणों को भी जब ये कहा जाता है, विनाश सामने खड़ा है, आज भी बाबा मुरली में कह रहा था कि लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश ला करके ही रहेंगी, है ना, प्रलय लाके ही रहेंगी। तो जब बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, तो भी छोड़ने का मन नहीं करता है, तो भाई विनाश सामने खड़ा है तो भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, समर्पणमयता की भावना नहीं आती है, है ना? और जिनको आई डर के मारे, 76 में विनाश होगा विनाश होगा विनाश, उस समय डेट दे दिया था, विनाश होगा विनाश होगा, कई लोगों ने क्या किया, सब बेच बाज के सब छोड़ दिया, और उसके बाद जब 76 के बाद विनाश नहीं हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान में ही नहीं रहे, ज्ञान में ही नहीं रहे, कि सोचा ये ब्रह्मा कुमारियां झूठ बोलती है, चलो वापस दुनिया में चलो, कुछ नहीं होने वाला है, ये विनाश होने वाला ही नहीं है, तो वापस दुनिया में चले गए। जो डर से, विनाश के भय से जिसने छोड़ा था, नहीं हुआ तो वापस चले गए। अच्छा, इसी तरह जिनको साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते आज वो कहां है। तो जो साक्षात्कार के लालच से ज्ञान में चले वो भी नहीं रहे, जो विनाश के भय से ज्ञान में चले, जब विनाश नहीं हुआ तो छोड़ छाड़ के वापस दुनिया में चले गए, है ना। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी पहले जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तब नहीं छोड़ा, जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तभी भी नहीं छोड़ा। कब छोड़ा, कब छोड़ा, हाँ, कब समर्पणमयता आई। समर्पणमयता तभी आई बाबा के जीवन के अंदर कि जब बाबा सत्संग में बैठे थे और अचानक उठ करके अपने कमरे में गए। जो ब्रिजेंद्र दादी कई बार अनुभव सुनाती अपना कि बाबा कभी बीच में से नहीं उठे, सत्संग के बीच से कभी नहीं उठे। बबुलनाथ का मकान बॉम्बे में, जहां रोज सवेरे बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित आता था गीता पाठ करने के लिए, सारा परिवार बैठता था गीता सुनने के लिए। और उसी दिन अचानक बाबा को कुछ हुआ कि बाबा उस सत्संग के बीच से उठ करके अपने कमरे में गए। ब्रिजेंद्रा दादी पीछे पीछे गई कि कुछ बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है देखे करके जब पीछे गई तो उस समय देखा कि बाबा एकदम टांग पर टांग चढ़ाए हुए खटिया पर ऐसे बैठे हैं। और पहले तो नेत्र बंद थे और फिर जैसे धीरे धीरे नेत्र खुले बाबा के, और नेत्र खुलने के बाद सारा रूम प्रकाशित हो गया। और रूम प्रकाशित होने के बाद जैसे ही वो लाल प्रकाश जो था वो चला गया, खाली एक ब्रिजेंद्र दादी ने ये चीज देखी थी कि जब वो प्रकाश चला गया और बाबा होश में आए तो बाबा ने कहा कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। और जैसे बाबा एकदम ये था कि कौन था, कौन थी वो लाइट, तो उस समय ब्रिजेंद्र दादी ने पूछा कि बाबा क्या हुआ। तो कहा एक बहुत पावरफुल लाइट थी, मेरे नजदीक आई, मुझ में प्रवेश किया और कुछ वचन उच्चारे, और वो तीन महावाक्य जो उच्चारण हुए हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में सभी ने पढ़ा है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और फिर वो लाइट चली गई और बाबा एकदम ढूंढने लगे कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। कहा उसने आकर के तीन कुछ मेरे मुख का आधार लेकर के कुछ उच्चारण किया। ब्रिजेंद्र दादी ने जब वो महावाक्य सुने थे पहली बार, और उसके बाद बाबा जैसे बाबा का स्वरूप ही बदल गया। क्यों, क्योंकि ये एहसास हो गया कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है, ये कहने वाली शक्ति कौन सी है। ये एहसास इतना डीप था कि उसके बाद समर्पण करना आसान हो गया कि ये कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परमात्मा मेरे तन का आधार लेकर के ये परिचय जब देते हैं और वो मुझसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं, सारा चित्र क्लियर हो गया कि इसका मतलब ऐसा महाविनाश होना है और उसके बाद ऐसी दुनिया आनी है और उसके लिए भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते। सारा चित्र बाबा के सामने क्लियर हो गया कौन मुझे कह रहा है। तो बाबा ने किसी की राय सलाह लेना आवश्यक नहीं समझा और सब कुछ समर्पण कर दिया। खाली तन मन धन संबंध नहीं, अपना समय श्वास शक्ति संकल्प सब कुछ समर्पण हो गया। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार जब हुआ, उसके पहले हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और ये साक्षात्कार होने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया, कौन मुझे कह रहा है? जिसको मैं अपना सखा मानता था वो मुझे नहीं कह रहा है। एहसास हो गया कि कौन मुझे कह रहा है, और जब ये एहसास होते ही हाथ जोड़ करके घुटना टेक दिया और अर्जुन ने कहा, बस करो प्रभु, अब मैं सब समझ गया, सब समझ गया और अब मेरा मोह नष्ट हो गया। क्योंकि उसके लिए अटक एक ही थी, मोह, मेरापन, मेरा परिवार का क्या होगा। इस युद्ध में अगर मैं अपना परिवार ही खो दूं तो कैसे मैं जीवित रहूंगा? उसके बाद अगर मुझे स्वर्ग की राजाई भी प्राप्त हो गई, मुझे वो मंजूर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको परमात्मा ने साक्षात्कार कराया, कौन कह रहा है, जैसे ये महसूस हुआ या एहसास हुआ कि कौन मुझे कह रहा है, उसके बाद घुटना टेक देना माना समर्पण, सरेंडर। उसके बाद एक भी सवाल नहीं, उसके पहले कितने सवाल, मन लगता नहीं है, कैसे लगाए, कर्मेंद्रियों को जीतना इतना आसान है क्या, कितने सवाल पूछे उसने, है ना? 12वें अध्याय तक तो उसके सवालों की ऐसी भरमार थी, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, कंटिन्यू, है ना? लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये युद्ध के लिए कौन मुझे कह रहा है, तो मेरा मोह नष्ट हो गया। अब हे प्रभु, आप जैसे गाइड करेंगे वैसे मैं चलूं। इसी तरह हमें ये एहसास है कि कौन मुझे कह रहा है, हा? कौन मुझे कह रहा है? बाबा की मुरली जब सुनते हैं, बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में कहते हैं कि बाबा ऊपर से अपनी टीवी में जब देखता है तो कभी कभी बच्चों के मिकी माउस के खेल देखते हैं, बाबा को भी हंसी आती है। कौन से मिकी माउस के खेल करते हैं बच्चे, हाँ? कौन से मिकी माउस के खेल बाबा ने बताए हैं? कि जब बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये पुरुषार्थ करो, ऐसा करो, तो बच्चे कई प्रकार के बहानेबाजी, बाबा कई बार कहते हैं बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है, कौन सी? बहानेबाजी। लेकिन जिस समय हम भगवान को बहाना देते हैं, क्या करे बाबा ये गृहस्थी ऐसी है, क्या करे बाबा ये है ही, हाँ? हमको बाबा ने पहले ही फंसा के रख दिया है, हम क्या करें इसमें, अनेक प्रकार की बातें। अमृत वेले के लिए कितने बहाने हम देते हैं, क्या करे बाबा उठना तो चाहते हैं, शरीर ही थक जाता है, उठा नहीं जाता, ये बहाना किसको दे रहे हैं? जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाए कि कौन मुझे कह रहा है, उसके बाद ये मिक्की माउस वाला खेल हम करेंगे, करेंगे, और अभी तक भी अगर हमारे मुख से निकल रहा है पुरुषार्थ नहीं कर पाने के लिए 10 बहाने मेरे पास है कि ये कारण हो गया, करना तो चाहते थे लेकिन ये हो गया। हाँ, लास्ट में बाबा को दिन की दिनचर्या के अंत में रात्रि को जब अपना पोता मिल देखते हैं और बाबा को कहते क्या करे बाबा, आज फिर से ये गलतियां हो गई, ये बातें हो गई, हम किसको कह रहे हैं? सुप्रीम अथॉरिटी को कहना यह समर्पणमयता है। और जब तक हम ये बहानेबाजी देते रहेंगे, हमारे बहाने चलते रहेंगे पुरुषार्थ के लिए, हर रोज कोई न कोई नया बहाना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं माया ये बहानेबाजी सिखाने में कितनी एक्सपर्ट हो गई है ना, कि भगवान के सामने भी हम अनेक प्रकार के बहानेबाजी दे देते हैं कि बाबा हम याद तो करना चाहते थे लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया, ये परिस्थिति आ गई, बाबा आपको क्या पता ये दुनिया कैसी है, आप थोड़ी रहते हैं इसमें जो आपको पता चले कि ये दुनिया में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सामने। हाँ, जब ये बातें कहते हैं तो बाबा नहीं जानता था क्या कि कलयुग में क्या प्रॉब्लम्स होंगे बच्चों के सामने? उसके बाद भी अगर पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं तो बाबा एक्स्ट्रा शक्ति देना चाहता है तभी तो। लेकिन अगर मैंने बहानाबाजी देना शुरू किया तो क्या बाबा की शक्ति को हम रिसीव कर सकेंगे? और जब तक वो शक्ति नहीं आएंगी तो समर्पणमयता। और इसीलिए जैसे वो शास्त्रों के अंदर गायन है कि द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हो रहे थे तो वो अपने पल्लू को एक पकड़ करके रखा था, पुकार भी रही थी हे प्रभु मेरी लाज बचाओ, लेकिन अपने साड़ी का पल्लू पकड़ करके खुद की रक्षा करना भी चाहती थी। जिस समय उसने उसको भी लेट गो कर दिया उसके बाद सारी साड़ियां उसको पहन गई, माना साड़ियां ऊपर तक आती थी लेकिन नीचे नहीं आ रही थी क्योंकि उसने मैं अपनी रक्षा करूं ये फीलिंग थी उसको। तो पुकारना एक तरफ लेकिन खुद को जैसे मैं खुद की रक्षा करूं जब तक कर सकती हूं ऐसे करके, तो टोटल सरेंडर नहीं हुआ। इसलिए साड़ियां ऊपर तक आती थी लेकिन नीचे नहीं आती थी। लेकिन जिस समय उसने वो पल्लू को भी लेट गो करके अब प्रभु तेरे हवाले संपूर्ण सरेंडर, जब ये सरेंडर हो जाते तब वो सारी साड़ियां उसके ऊपर आ गई। कहने का भावार्थ कि कई बार हम भी मेरेपन को पकड़ के ये किनारों को पकड़ के रखते हैं, ये पल्लू के किनारों को पकड़ के रखते हैं। इतना ही तो पकड़ा है ना बाबा, ज्यादा थोड़ी पकड़ा है हमने, कोई पूरी साड़ी थोड़ी पकड़े, इतना ही तो पकड़ा है ना। लेकिन जब तक इतना पकड़ के रखते हैं माना टोटल सरेंडर नहीं हुआ। ये मेरापन, ये इतना पल्लू भी मेरापन जो है ये भी जब तक है तब तक संपन्नता की ओर मेरा कदम आगे बढ़ नहीं सकता है। संपन्नता की और कदम बढ़ाने के लिए संपूर्ण मैं और मेरेपन को समाप्त कर देना, सरेंडर उसी को कर देना है ना? मैंपन और मेरेपन के भाव को, उस भाव को जब हमने समाप्त कर दिया और सरेंडर हो गया, बस अब बाबा तुम ही है, उसके बाद बाबा की हर रीति मदद हमें महसूस होने लगेगी। और ये सरेंडर तब होगा कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है, कोई व्यक्ति मुझे नहीं कह रहा है। क्योंकि जब तक हम व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्ति के रूप में देखेंगे बाबा को भी, तो हम बहाने जरूर देंगे। अमृत वेला न उठने का बहाना मुरली क्लास में न जा पाने का बहाना या दिन भर में भी बाबा की याद न रहने के कारण अनेक प्रकार के बहाने या जो बाबा ने नियम मर्यादाएं हमें दी है उन नियम मर्यादाओं पर न चल पाने के कारण जो बहाने हमें हम देते रहते हैं वो तभी देते हैं क्योंकि मैंने समझा ही नहीं है कि कौन मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है। कई बार हम कोर्स में ये बात लोगों को कहते हैं कि मान लो को प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दी और आपको एक कार्य एक प्रोजेक्ट दिया कि ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके मेरे पास ले आना है ये टाइमिंग पर भाई एक हफ्ते के बाद 11 बजे आप आ जाना। क्या करेंगे? दिन रात लग जाएंगे और आपकी लगन को देख करके परिवार वाले क्या कहेंगे? चलो मैं भी हाथ दे मदद कर देता। लगन को देख करके आपकी लगन और उस इम्पोर्टेंस को कि किसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है और किसने मुझे ये प्रोजेक्ट दे करके अपेक्षा रखी है मेरे से, तो दिन रात एक करके भी उस समय थकावट नहीं होती है क्योंकि एहसास है कि किसने मुझे ये कार्य दिया है और अगर मैंने समय पर यह कार्य कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट को दे दिया तो उसके बाद मेरी नामना या मेरा स्तर क्या होगा। ये अचीवमेंट्स अगर आप जानते हैं कि इसके बाद मुझे ये अचीवमेंट मिलने वाली है तो दिन रात लग करके भी आप करेंगे और आपकी लगन को देख करके परिवार वाले भी आपको क्या कहेंगे। दूसरा कोई काम करने का आपका होगा तो क्या आप छोड़ो वो हम कर देंगे, तुम अपना ही काम कर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपकी लगन और मेहनत को देख करके वो दूसरा कोई काम आपको करने के लिए नहीं कहते, कहेंगे छोड़ो ये हम कर लेंगे तुम, या तो आपको पूछेंगे कि हमारे लायक कुछ है तो बोल हम मदद करेंगे। लगन को देख करके ही कहेंगे। आपका समर्पण भाव उस प्रोजेक्ट के प्रति, उसको देख करके सब सहयोगी बन जाएंगे। कोई उसमें विघ्न क्रिएट करने का प्रयत्न भी अगर ईर्ष्यावश करता होगा तो परिवार वाले उनको देख लेंगे, आप तक वो विघ्न आए ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन हमारे सामने क्या है बहाना? अरे बाबा क्या करे, परिवार वाले इतने विघ्न डालते हैं, क्यों डालते हैं? शायद मेरी इतनी लगन ही नहीं है, वो समर्पण भाव ही नहीं है, इसीलिए परिवार वाले भी विघ्न डालते हैं। सहयोगी बनना तो छोड़ो, विघ्न डालते हैं। उसका कारण मेरा समर्पण भाव कम है, शायद कम है। नहीं तो अगर मेरी लगन और समर्पण भाव हो तो वो विघ्न डाले या सहयोगी बनेंगे, क्या करेंगे? और कोई ईर्ष्यावश अगर विघ्न डालने का प्रयत्न तो भी उनको देख लेंगे, वो विघ्न मेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये परमात्मा की गारंटी है कि बच्चे आप शुरू तो करो, मैं कोई विघ्न को आप तक पहुंचने नहीं दूंगा, ये बाबा की गारंटी है। लेकिन मेरी लगन और मेरा समर्पण भाव इतना हो तब, और यही समर्पण भाव और लगन संपन्नता की ओर ले जाता है। अगर बाबा भी संपन्न बने तो इसी भाव से बने कि परिवार वाले सारे सहयोगी बन गए, कोई विघ्न डाल नहीं सका, विघ्न डालने वालों को रोकने वाले अनेक निकल गए, बाबा तक वो विघ्न पहुंच नहीं सका और जो पहुंचा उसके लिए भी भगवान रिस्पॉन्सिबल बन गए कि जब बाबा को कोई चाकू लेकर मारने आया तो ऊपर वाले ने उसके स्वरूप द्वारा ऐसा साक्षात्कार करा दिया कि वो खुद भाग गया वहां से। ये है समर्पण मयता और लगन के कारण संपन्नता को प्राप्त कर लेना, है ना? लेकिन हम लोगों के सामने अनेक प्रकार के अभी तक के मैं और मेरे पन के पल्लू जो हमने पकड़े हुए हैं, जिस कारण हम बहाना दे रहे हैं, तो बाबा ये देख करके मिक्की माउस कह करके हंसता है। इसीलिए बाबा को हंसी आती है कि मिक्की माउस का खेल करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा, बाबा को पता नहीं चलेगा। माना अगर मैं कोई बहाना दूं तो बाबा को पता नहीं चलेगा। क्या हमारी समझ है वो छोटे बच्चे की तरह ही है ना, कि कुछ छुपा करके वो सोचता है मेरे मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता है, और मम्मी पापा को पहले ही मालूम कहां वो छुपाया हुआ है उसने है? तो ना समझी कहेंगे ना। तो इसीलिए जब ऐसी ना समझी करते हैं तो बाबा को भी ये मिक्की माउस का खेल की तरह देखते हुए बाबा को भी हंसी आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये भान को, मैं और मेरेपन के भाव को भी समाप्त करना है। मैंपन एक तो अहंकार के रूप में तो हमने समाप्त कर ही दिया, अहंकार के आधार पर दूसरे सारे विकार साथ में जुड़ जाते, तो इसलिए वो बड़ा स्वरूप जो है वो तो समाप्त हो ही गया। जो बहुत विकराल रूप है उसको तो समाप्त करना आसान था, अशुद्ध अहंकार को। लेकिन अभिमान और भान, एक है देह भान, एक है देह अभिमान। अभिमान माना जहां पर मैंपन की ये फीलिंग आई, मैंने किया, मेरा ये, मैंपन का भाव आया, वो अभिमान है। और भान माना भाई ये मेरी कर्मेंद्रिया है, अगर मैं ये करूंगी और मेरी कर्मेंद्रिय को कष्ट पहुंचाए, शरीर को कष्ट, ये देह भान कि जो मम्मा के उसमें देखने को मिलता है कि मम्मा देह भान से भी जब ऊपर हो गई थी, मम्मा को जब ऐसी बीमारी हुई और उस वक्त मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट्स इतनी नहीं थी कि कैंसर हार्डली किसी किसी को होता था, इसलिए इतनी तरक्की भी नहीं हुई थी कि भाई उस बीमारी को संपूर्ण रीति से कंट्रोल किया जाए। तो दर्द काफी होने के बाद भी अशरीरीपन का अभ्यास वो करते हुए उस देह भान यानी जो कष्ट की महसूसता है, वो कष्ट की महसूसता से भी ऊपर उठ जाना, यह है देह भान से भी ऊपर उठना। मैंपन का भाव तो नहीं था मम्मा के अंदर, लेकिन देह भान की जो फीलिंग थी वो भी नहीं थी, क्योंकि जब बाबा ने लास्ट दिन भी मम्मा से ये कहा, जो साथ में रहने वाले मम्मा के ब्राह्मणी थी, तो उनके साथ में मैं एक बार बातचीत कर रही थी, तो कहा कि मम्मा को सारी रात इतना दर्द था कि मम्मा सारी रात शायद सोई नहीं होंगी, पूरी रात नहीं सोई थी, इतना भयंकर दर्द था। लास्ट दिन माना 24 जून से पहले दिन, शरीर छोड़ने से पहले दिन, तो इतना दर्द था कि पूरी रात मम्मा ने बैठे बैठे ऐसे बाबा की याद में ही बैठे बैठे सो नहीं पाई। जब सुबह हुई और क्लास के बाद बाबा ने कहा कि मम्मा आप बच्चों को अंगूर बांटेंगे, माना मम्मा ऐसे हाथ करने, उसमें भी मम्मा को इतना दर्द होता था, पानी जब वो पिलाती थी तो कहा मैं जब पानी मम्मा ऐसा हाथ करती थी तो वो भी उसको इतना दर्द होता था कि वो चीज देख सकते थे हम कि मम्मा की सहन शक्ति कितनी अपरंपार है, कितना सहन शक्ति अंदर में है, और देह भान के ऊपर भी विजय प्राप्त किया हुआ है उस आत्मा ने, ये देखा। क्योंकि शरीर अपना काम कर रहा था, है ना, आत्मा भले अपने पुरुषार्थ में थी, इसलिए उस भोगना के ऊपर विजय प्राप्त कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कष्ट कहीं न कहीं फील तो कराता ही था देह जो था वो। तो इसीलिए जब मम्मा को ये बाबा ने कहा कि मम्मा सुबह फिर भी क्लास में पहुंच गई, आप सोचो ऐसी हालत में इतनी रात भर सोई न हो, और सुबह पहुंच जाए क्लास में, हम लोग अगर है तो रात भर अगर हमें पूरा दर्द हो रहा हो तो दूसरे दिन सुबह में क्लास में पहुंचने की तो बात ही क्या, बहाना नहीं देंगे हम, क्या करें, बहुत दर्द था, सारी रात नहीं सो पाए, सुबह में कैसे क्लास में आते हैं। लेकिन मम्मा ने कभी ये बहाना नहीं दिया। हाँ जी, मम्मा की हर बात में, हर एग्जाम्पल जो मम्मा के बारे में सुनते हैं तो उसमें बाबा ने कहा जी हाँ बाबा, जी हाँ, हुजूर को हमेशा हाँ जी किया। बाबा जानते थे कि भाई क्लास में आना है, बाबा को इतनी पढ़ाई की वैल्यू है, तो मम्मा पहला नंबर क्लास में आ जाती थी इतना दर्द होने के बाद। और क्लास के बाद भी ऐसे नहीं कि मैं तो सो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। बाबा ने कहा मम्मा सब बच्चों को अंगूर बांटेंगे टोली के रूप में। मम्मा ने कहा जी बाबा। और उस समय मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए एक एक को इतनी धैर्यता से अंगूर बांटना, ये नहीं कैसे मना, हम अगर अपने आप को उस जगह पर रखे तो दर्द हो रहा, चलो बाबा ने कहा इसलिए मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम करेंगे तो भी ऐसे एकदम फटाफट दृष्टि दी नहीं दी करके फटाफट। लेकिन मम्मा ने एक एक को प्यार से दृष्टि देते हुए, इतनी ही धैर्यता से मुस्कुराते हुए एक एक को अंगूर बांटना, समर्पण मयता की हाइट्स जिसको कहा जाए। चलो बाबा को साक्षात्कार हुआ इसलिए समर्पण होना आसान था, लेकिन मम्मा को जिंदगी में कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी इतना निश्चय बुद्धि हो करके समर्पण भाव के साथ जी बाबा कह करके सेवा में तत्पर हो जाना, यही संपन्नता का आधार था कि कौन मुझे कह रहा। शायद मम्मा को हर वक्त यह एहसास था कौन मुझे कह रहा है। आज हमें निमित्त कोई भी बहन या भाई कहते भी है, लेकिन उस वक्त अगर मैं ये सोचूं कि इस बहन के माध्यम से भी कहने वाला कौन है, बाबा प्रत्यक्ष में तो आकर के नहीं कहेगा, किसी के माध्यम से ही कहेगा, तो कौन मुझे कह रहा है ये एहसास मुझे कितना है। क्योंकि जिस दिन ये एहसास हो जाए उसी दिन से हमारा संपन्नता की ओर कदम आगे बढ़ता जाएगा, एक एक कदम हमें संपन्न स्थिति की ओर ले जाएगा। इसलिए आज के बाद कोई भी बहाना दो तो कोई व्यक्ति को नहीं दे रहे हम, कौन मुझे कह रहा है यह एहसास जितना होगा जागृत रूप में, उतना ही संपन्न बनना, समर्पणतामय स्थिति को ले आना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन की भी समर्पण मयता तभी हुई जब यह एहसास जागृत हुआ, ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी समर्पण मयता तभी आई जब यह एहसास जागृत हुआ, और हम बच्चों के मन में भी यह एहसास जिस दिन जागृत हो जाएगा कि कौन मुझे कह रहा है, उसके बाद शायद हम कोई बहाना देने के नहीं। तो आप सोचो कि अंतिम समय जब हमें हमारे हर बहाने सामने आएंगे साक्षात्कार के रूप में कि कब कब हमने कौन सा बहाना दिया था पुरुषार्थ के लिए, तो उस समय हमें कैसा महसूस होगा कि हमने नादानी की, यही आएगा अंदर में, इतनी मैच्योरिटी कि हम भगवान को ये बहाने दे रहे थे कौन मुझे कह रहा था और उसको हम क्या कह रहे थे, ये बहाना दिया हमने। तो ये एहसास जितना जागृत रूप में होगा उतना उसके बाद हमारे बहाने समाप्त और संपन्नता की ओर हम आगे उस लिफ्ट में आगे चढ़ जाएंगे। तब तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा चढ़ने का, फिर लिफ्ट में चले जाएंगे। तो भी लिफ्ट में जाना है या सीढ़ी चढ़ना है, क्या करेंगे तो इस एहसास को जागृत कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति। हम सभी अपने मन को, संकल्पों को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और आज इसी रियलाइजेशन में स्वयं को ले चले कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है कि मैं इस देह से परे चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। कौन मुझे इस संगम युग का महत्व बताते हुए मुझ आत्मा का पाठ क्या है कि एहसास कराते हैं इसी संगम युग में मुझे अनेक जन्मों के लिए अपना जमा का खाता बढ़ाना है। कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान ने मुझे ये दिव्य जन्म दिया है। इस पूरे संसार में से कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं एक सिलेक्टेड आत्मा हूं। कितना ऊंचा जीवन है ये, कितनी ऊंची पढ़ाई है जो भगवान मुझे पढ़ा रहा है। इस तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ हस्ती परमात्मा मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं ही अपने अनादि स्वरूप में परमधाम में परमात्मा के सानिध्य में इस निराकारी दुनिया में निराकारी स्वरूप में निराकार बाप के साथ विराजमान महसूस करे मैं परमात्मा के सबसे समीप रत्न हूं, चुना हुआ रत्न हूं, बाबा की सकाश से मैं स्वयं को सशक्त करती हूं। अपने मन और बुद्धि को समर्पित करती हूं, अपने मैं और मेरेपन को अर्पित करती हूं। कितना सुंदर एहसास है, मैं विशेष आत्मा हूं। बाबा ने मुझ आत्मा को पात्र आत्मा बना दिया।
धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म देह भान को भी अर्पित कर देना है। मैं आत्मा निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है, मैं और मेरा बाबा। कितना सुंदर एहसास है, मौन है लेकिन बाबा की यादों में समाये हुए, स्नेह भरी याद, एक नामी बन गए हैं और अनन्य याद में समा गए प्यारे बाबा के शक्तिशाली किरणे। मुझ आत्मा को स्पर्श करती है तो हर कमजोरी स्वतः मिटती जाती है। मीठे बाबा के असीम स्नेह की किरणें मुझ में पात्रता को विकसित करती जाती है और मुझ में हिम्मत और शक्ति आ जाती है। बाप समान संपन्न बनने की, मीठे बाबा अब मैं आप समान जरूर बनकर दिखाऊंगी, संपन्न बनकर दिखाऊंगी। मैं स्वयं में पुरुषार्थ की ऐसी लगन लगाऊंगी जो मेरे जीवन द्वारा मेरे पिता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनेक आत्माएं करे।
आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पित।